मैं चाहती हूं कम से कम एक घंटा अपने शौहर के साथ रहूं, उनके बिस्तर के पास कुर्सी लगाकर बैठूं, बातें करूं, दुआ पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, बालों में कंघा करूं, नाखून काटूं। आप कह दें कि मुझे ये इजाजत दी जाए।
हफ्ते में कितनी मरतबा वहां दाना लेकर जाते हो?
3 मरतबा, कभी दिन में तो कभी रात में।
पोल्ट्री फार्म के अंदर भी गए हो?
जी हाँ, तकरीबन हमेशा ही।
हालिया कुछ दिनों में वहाँ किसी अजनबी आदमी को नहीं देखा?
आदमी एक मरतबा देखा है।
कौन था, उसका नाम?
नहीं जानते, मैं नहीं पहचानता था। एक बैग था उसके पास, उस बैग की तरह जैसा डॉक्टर लोग रखते हैं।
उसका चेहरा कैसा था, कुछ याद है?
मेरे ख्याल में तकरीबन 50 बरस का था।
कहाँ जा रहे हो?
क्या है यहाँ गिरते पड़ते आए हो? किस लिए? इसलिए कि बाबाई की बीवी को डरा सकूं? देख रहे हो कि डर गई। अब निकले यहां से। अहमद रजा बाबाई बिस्तर पर है और कोमा में है, इसलिए पुलिस ने भी उसके दरवाजे पर एक कुर्सी डाल रखी है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो।
डराने की क्या बात है, हम लोग बच्चे तो नहीं है। आधी रात को गैर मुल्की डॉक्टर का भेज देकर मुल्क से भगा दिया।
ये किसने कहा?
तुम लोगों ने भगा दिया।
किसने कहा ये?
क्या फर्क पड़ता है कि किसने कहा, अहम यह है कि नहीं है। असल में तुमसे क्या मतलब? चलो।
मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हिलाया जा सके। वो कैसे चला जाएगा? ये सब अफवाह
देखते हैं, बाद में पता चलेगा अफवाह है या
वो अपने बिस्तर पर है। निकल जाओ यहाँ से।
हम अपने पैसे को मजबूती से पकड़कर बैठेंगे। हमारा पैसा उस बिस्तर पर है, अगर अफवाह भी हो तो भी शक दूर करना होगा। मैं तो उसके बिस्तर के पास से हिलूंगा भी नहीं।
चलो चलो।
अहमद रजा बाबाई कहाँ है?
ये क्या हरकत है, ये अस्पताल है, जरा आहिस्ता बोलिए।
ये बताओ तुम कर्जा लेने वालों में से हो?
नहीं तो क्या, बेकार में यहाँ आया हूँ।
तुम्हारा कितना कर्जा है?
जितना दूसरों का है मुझे भी उतना ही चाहिए।
दूसरों के जितना कितना? हाँ तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने तुमको कर्ज ख्वाहों में कभी नहीं देखा।
रुको मैं देखता हूँ क्या बिला वजह हंगामा कर रखा है। अहमद रजा बबाई अपनी जगह से हिला भी नहीं है। सबसे बड़ा कर्ज खा मेरा मामू है, हम यहाँ देखभाल कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ज्यादा शक है उस जवान को यहाँ रख दो, ये दिन रात पहरा देगा। बाकी लोग निकल जाओ। चलो जनाब चलो, निकलो यहाँ से।
तुमने बताया नहीं कि किस कदर कर्जा दिया है।
तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो?
अहमद रजा बबई के भागने की खबर किसने फैलाई? तुम रुको पुलिस के आने तक। तुमसे मुखातिब हूँ, तुम कर्ज ख्वाहों में से नहीं हो, फिर इस मामले में क्यों कूद रहे हो? क्यों? तुमसे मुखातिब हूँ, तुमसे।
इसको जाने दो कि हंगामा ठंडा हो।
नहीं, ये रुकेगा जब तक पुलिस नहीं आती। हो सकता करिश्मा हो जाए और अफवाह सही साबित हो जाए।
कावे इधर आओ, मुझे तुमसे काम है।
मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे यहाँ किसने भेजा है। रुको तो जरा।
हमारे साथ होशियारी।
अरे छोड़ दो इसको, तुम लोग तुम्हें क्या लेना देना है?
और ले,
कोई मदद को आए।
दादा बनता है,
मत मारो,
कोई आगे नहीं आएगा।
कोई मदद करे,
आकर मदद करो।
छोड़ दो उसको, मार डाला। अरे
मैंने कहा कोई आगे नहीं आएगा। आगे से हमारे साथ होशियारी नहीं चलेगी, समझा?
मामू घर पर हैं।
क्या हुआ?
उस लड़के को दूसरों से कहकर सजा दिलवा दी।
किसको?
उस लड़के कावे को। आदमियों को कहकर उसका कचूमर निकाल दिया। मेरा और मामू का नाम बीच में था।
क्या मतलब? जनाबे अली गंदगी फैलाते हैं और मेरे डैड का नाम बीच में लेते हैं?
मैं तुम्हारे बाप की वजह से इस गंदगी में पड़ा हूं। मामू कहां है?
तुमने क्या गलती की है? तुमने क्या गलत काम किया है? क्यों? किस लिए डैड?
रोया धीरे, ठंडी रहो।
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों किया गया। डैड,
खुदा रहमत करे नाहिद पर महरम गैर महरम समझती थी, अचानक किसी के यहाँ दाखिल ना होना समझती थी। ये के जूते पहनकर किसी के घर में दाखिल नहीं हुआ करते समझती थी। मुस्कुराहट और प्यार मोहब्बत समझती थी। ये सब चीज़ें जो तुमको पूरी ज़िंदगी सिखाई, मगर ऐसा लगता है कि तुम अच्छे शागिर्द नहीं थे परवेज़।
मगर बदले में तुमने बहुत अच्छी तरबियत दी अपने शागिर्द काव्य को। बहुत अच्छी तरह सिखाया कि कैसे मेरी आंखों में धूल झोंके, किस तरह मेरी लड़की की तरह पढ़े। तुमने बहुत ही घिनौना खेल शुरू किया है नरगिस।
मैंने नहीं सिखाया।
क्यों नहीं? तुमने सिखाया है, तुमने मेरी के बारे में बताया है।
मेरी तुम्हारे अमाल का नतीजा है। जिसने इसी दुनिया में तुम्हारा गिरेबान पकड़ा है, उस दुनिया में भी यही होगा। मैंने काव्य को उसके बाप के बारे में बताया है, उसकी माँ के बारे में बताया है। जो चीज़ें जानना उसका हक था वही बताई है। इंसान की मुश्किल जानने में है। उसने अगर जाना और अच्छा और बुरा ना पहचान पाया और सवाब को गुनाह से अलग ना किया, तो नफरत और कीना उसकी सांस और गर्दन को जकड़ लेंगे, जिस तरह से तुमको पकड़ रखा है। और छुटकारा मुश्किल है। इस नफरत ने मेहरी को दीवानगी के इल्ज़ाम और करीबुल मौत हालत में पागल खाने भिजवा दिया। हिसाब किताब का दफ्तर खुल गया है परवेज शाइस्ता। मैंने कहा बच्चे सब कुछ खुदा पर छोड़ दो, देखो उस जालिम पर क्या बला नाजिल होती है। उसने नहीं सुना, वो खुद तुमसे तुम्हारी सांसें छीनना चाहता है। मैंने कावे को रोया की जानिब नहीं भेजा है, मैं जो चाहती हूं कि वो पलट आए तो वो मासूम बच्ची रोया की वजह से है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि रोया से उसका ध्यान हटा दूं, मासूम और नादान कावे की वजह से है, ना कि तुम जैसे आदमखोर की वजह से। जाओ और अपनी बेटी को आगाह करो, अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा सही सच बोलो, जाकर बताओ कि कावे के दिल में इश्क नाम की कोई चीज नहीं है, बस सिर्फ नफरत और कीने की आग है। अगर पूछा क्यों, नफरत कहाँ से आई, तो उसे बता दो, बता दो कि कहाँ से आई। कहो कि एक यतीम बच्चे का नाम छीनने से आई, एक यतीम बच्चा जो अब जवान हो गया है। बता दो कि ये नफरत मुझ जैसे साजिश करने वाले बाप के जरिए आई, और कावे की माँ की मौत के बारे में जो तुम जैसे बाप के जरिए हुई। अपना सर झुकाओ और सब कुछ बता दो, जाओ अपनी बेटी को साग से बचा लो। परवेज, अगर कावे के बदन से एक भी रोआ कम हुआ तो तुमको जलील कर दूंगी, फातिमा जेरा की कसम जलील कर दूंगी।
मामूजन, मुझे आपसे बात करनी है।
जनाब इस्माइली, इमरजेंसी वार्ड में तशरीफ लाएं। जनाब इस्माइली, इमरजेंसी वार्ड में तशरीफ लाएं।
आपका हाथ तो देखूं। देखूं तो आपका हाथ डैड।
मेरे जहन में अब कभी भी आपका हाथ पाक साफ नजर नहीं आएगा, कभी नहीं।
ये मेरा काम नहीं था, मैंने नहीं चाहा था। ये बात मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं।
मुझे यकीन है।
शुक्रिया।
मुमकिन है कभी किसी रोज किसी के लिए
आपकी मर्जी के मुताबिक कभी कोई ऐसा वाकया अंजाम पाया हो?
हाँ, ये मुमकिन है।
मैं समझ गया।
मैं नरगिस के पास गया था।
शायद अगर तुम या तुम्हारे शौहर ना होते तो इस तरह का वाकया नहीं होता। मैं इस दुनिया में कसूरवार की तलाश में हूं।
सलाम।
सलाम।
सलाम इंस्पेक्टर।
सलाम। थोड़ी देर रुके। उस नौजवान का चेहरा आपके लिए जाना पहचाना नहीं था?
नहीं, मगर जनाब शाइस्ता के भांजे का चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना है।
मेरा काम इन झगड़ों को सुलझाना नहीं है, मेरा काम यह है कि यह पता लगाऊं कि यह अफवाह कहां से निकल कर आई और उसका मकसद क्या था और भागने वाला वो नौजवान कौन था।
वो लोग कावे को मारते जा रहे थे, मगर कावे की निगाहें सिर्फ उस नौजवान पर टिकी थी जो भाग रहा था। उसको मार रहे थे ताकि कावे उस तक ना पहुंचे। मुझे यकीन है कि वो लोग कावे की पिटाई क्यानूष के इशारे पर कर रहे थे।
तशरीफ लाइए।
कावे की पिटाई क्यों हुई?
क्योंकि वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा था।
क्या असल वजह यही है?
असली वजह यही है।
आपके ख्याल में कर्जदार लोग अस्पताल क्यों आए थे? इसकी क्या वजह हो सकती है?
तुम्हारे ख्याल में कर्जदार लोग मेरे घर क्यों आए थे? इसकी क्या वजह हो सकती है?
दर्द का इंजेक्शन लगा दिया है, फिलहाल सो रहे हैं।
ओहो, क्या हालत बना दी है।
हाँ तो
हाँ, फर्जी नौ और पर्दा याकूत अभी तक गायब हैं। हम सभी जगह उनकी तलाश कर रहे हैं। ये रहा रिकॉर्ड। इसका रिकॉर्ड निकाला गया है। ये एक डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जिसकी डॉक्टरी का लाइसेंस कई बरस पहले जब्त कर लिया गया था। रिकॉर्ड है इसका, मुजरिमों के बदन से ज्यादा गोलियां निकाली हैं।
ये दूसरी मर्तबा है कि कर्जदारों को गलत बताया गया। पहली मर्तबा शाइस्ता के घर पर और अब इस अस्पताल में। जो लोग अस्पताल में जमा हुए थे उनको मेरे ऑफिस में बुलाओ, उनके सरगना शाइस्ता के भांजे की अनोज को भी।
जी जनाब।
उस जिद्दी आदमी ने यह नहीं बताया कि उसने कावे की ऐसी हालत क्यों की?
कहता है कि इज्जत का मामला था, शाइस्ता की बेटी के लिए कावे की जानिब से मुजाहिमत।
हेलो, सलाम, ठीक हो? मेरे डैड की तरफ से कोई खबर मिली क्या?
क्यों नहीं, फोन किया था। तुम्हारी माँ की हालत ठीक है, अभी तुम्हारे डैड घर पर हैं, उन्होंने फोन करने के लिए कहा था। देखो मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, कोई हरज तो नहीं है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। पूना, मुझे भी छोड़ दो।
सलाम
सलाम प्यारी बच्ची।
ये क्या है?
बाद में समझ जाओगी।
ए
खुदा गवाह है कि ये नाइंसाफी थी। मैं हमेशा अपने दांतों का ख्याल रखती हूँ, ब्रश से लेकर सख्त और कड़ी चीज़ों का दांतों से ना तोड़ने तक। ये नाइंसाफी थी ना कि शादी के मौके पर शादी के जोड़े में इस कदर मेहमानों की मौजूदगी में अचानक दांतों में दर्द शुरू हो गया। कैसा शदीद दर्द था ना? बेमुरम्मत कहीं के, मैं बता रही थी कि दांत में दर्द हो रहा है और तुम मुँह फाड़े हंस रहे थे। दर्द से मेरे आंसू निकल पड़े और तुम्हारी हंसी और बढ़ गई। जब तुम्हारी माँ ने देखा कि मैं गिर पड़ी तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और कहा, हाय मेरी बहू बेहोश हो गई। जब उन्होंने ये कहा तो तुम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितना अहमकाना था ना कि शादी के जोड़े में मैं डॉक्टर की कुर्सी पर पड़ी थी, चिल्लाई और दांत निकलवाया। उसके बाद तो और हंसी की बात ये थी कि दोबारा शादी की तकरीब में आना पड़ा, सूजे हुए चेहरे के साथ शादी में आना पड़ा इस तरह। कितना यादगार दिन था।
मोहतरमा, आप इमरजेंसी वार्ड में जाएं, जो आदमी एडमिट है वो आपको बुला रहा है।
हेलो रोया खानम, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं तुमको समसामी के साथ मिलना चाहता हूं। सिर्फ उनकी मौजूदगी में। हाँ, हमारी मुलाकात का वादा इसी अस्पताल के सहन में।
सलाम, क्या तुमको मुझसे कोई काम था?
काम तो नहीं, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। नरगिस जान घर पे अकेली हैं और इन्हें दिल की बीमारी है। अच्छा नहीं कि रात में अकेली रहें। नर्स का बच्चा अभी छोटा है, रात में वो भी अपने घर लौट जाएगी और मैं भी ऐसी हालत में नहीं कि यहाँ से उठ सकूं। आपसे ये दरख्वास्त है कि अच्छा हो कि आज की रात आप नरगिस जान के पास ठहर जाएं। अलबत्ता अगर आपको तकलीफ ना हो तो।
हाँ जरूर।
शुक्रिया।
मोहतरमा ख्वाजस्ता बाबाई, बराए मेहरबानी नर्सिंग।
फिलहाल खुदाफिस। मैं ख्वाजस्ता बाबाई हूँ।
ये खाला अम्मा का घर नहीं है कि जो चाहे सो फोन करे। इतना काम का बोझ है कि पूछो मत। उस पर तुम लोगों का फोन।
हेलो
हेलो, ख्वाजस्ता तुम ही हो ना?
क्या हुआ पूना?
आ जाओ बस।
तुम कहाँ हो?
मैं और सारा हम लोग एक जली हुई पोल्ट्री फार्म में हैं।
हेलो सलाम, मैं इंस्पेक्टर सातकी से बात करना चाहती हूँ। सारा, पूना,
आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आओ।
तुम लोग इस अंधेरे में कहाँ हो?
फोन पर तुम्हारी आवाज कांप रही थी।
अभी भी कांप रही हूं मगर अचंभे से।
यहां क्या कर रही हो?
अपने शौहर का कपड़ा पहचानती हो? अगर ये उसका है तो ये भी उसी का होगा। सोने की ईंट खोजस्ता, तुम्हें मालूम है कितना पैसा है? वाह, मैंने कभी भी इतने करीब से खुशकिस्मती की खुशबू महसूस नहीं की थी।
कुछ बताओगी भी या नहीं कि क्या हो रहा है?
हम घर से जैसे ही बाहर निकले, पूना की गाड़ी में आकर बैठे, एक चाकू पूना के गर्दन पे आके टिक गया।
चाकू को मेरी गर्दन पर रख दिया था, बस यही कह रहा था कि चलो। ये नहीं मालूम था कि वो कौन है और ना ही मालूम था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा दूर चले थे कि कहाँ रुको।
हम लोग रुके तो बोला यहाँ है। कहा हम लोग दो पार्टनर थे, दो पार्टनर जिन्होंने इस 8 अरब धोखेबाजी का मंसूबा बनाया था। उनमें से एक अहमद रजा था।
दूसरा पार्टनर अहमद रजा था जिसने धोखा दिया और सोने की ईंट लेकर भाग गया और कहीं छिपा दिया। ये सब बातें हमें बताई और चला गया।
वो चला गया और हमें यहाँ छोड़ गया, अपना चेहरा तक देखने का मौका नहीं दिया।
खुजस्ता, तुम्हारा शौहर 8 अरब का सोना लेकर भाग गया। वही बात निकली जो मैंने कही थी कि अच्छा हाथ मारा और ले भागा, उनसे ले भागा जो कि शाइस्ता है। अब उसके पार्टनर को भी ये तश्वीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो नहीं मरा और होश में आ गया तो वो पुलिस को ये ना बता दे कि सोना कहाँ छुपा रखा है और उसके पार्टनर का नाम क्या है। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा शौहर निजात पाए और वो 8 अरब का सोना भी हाथ आ जाए जिसकी जगह सिर्फ तुम्हारे शौहर को मालूम है, तो सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है तुम्हारे पास, वो ये कि
उनका ये चाहना है कि तुम अस्पताल जाओ, किसी भी बहाने से और वजह को बताकर अहमद रजा को उस अस्पताल से निकाल कर किसी दूसरे अस्पताल में दाखिल कराओ। ऐसे अस्पताल में जहाँ वो लोग चाहते हैं, ऐसे अस्पताल में जहाँ उन लोगों का हाथ खुला और वो लोग वहाँ से अहमद रजा को भगा सके, ताकि वहाँ इलाज भी ढंग का हो और उस तक कोई पहुँच भी ना सके।
देखो, तुम अपनी जिंदगी को, काम काज को, अपने आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को बदल सकती हो। बात नहीं करोगी? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ?
अपना मुंह बंद करो।
हाँ, यानी जलजला।
چه آرام در خود شکستم،